वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज ओम या प्रणव शब्द के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। शिव पुराण में बताते हैं कि प्रणव जो प्रे नाम है वो प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर को कहा है। प्र मतलब प्रकृति से, और नप का मतलब नाव है, कि जो प्रणव क्या है कि जो हमें इस संसार से पार कराने के लिए जो नाव का काम करे वो प्रणव है, इसलिए ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। दूसरा इसका अर्थ कहा है कि ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है कि प्र का मतलब प्रपंच, नै का महीन, नै का मतलब नहीं है, और वह है तुम लोगों के लिए, कि जो प्रणव को जप करते हैं उनके लिए वो कहते हैं तुम्हारे लिए कोई प्रपंच नहीं है। तो प्रणव को इस तरह से अनेक उपनिषद में, गीता में, अनेक तरह से भगवान ने इसके बारे में हमें कहा है। ओम जो है ये अक्षर अविनाशी परमात्मा है। ये संपूर्ण जो हमारा जगत है, जो संसार हमें दिखाई देता है दृश्यमान जगत, उस परमात्म स्वरूप ओंकार की ही महिमा का विस्तार है। भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, इन तीनों कालों में होने वाला ये सारा जगत ओंकार ही है, तथा जो उपयुक्त तीनों कालों से अतीत और जगत से भिन्न कोई अलग तत्व है तो वो भी ओंकार ही है। निश्चय ही ये सब ब्रह्म ही है, ये आत्मा भी ब्रह्म है, अहम आत्मा ब्रह्म, जो उपनिषद में भी आता है। ओंकार में स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीर वाले इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को आरोप करके अर्थात एक परमात्मा ही सत्य है, और उन्हीं में इन स्थूल सूक्ष्म कारण जगत की कल्पना हुई है। तो विवेक द्वारा अगर हम ये अनुभव करके निश्चय करें कि जगत जो है सच्चिदानंद परमात्मा ही है, तथा परमात्मा होने के कारण ये तत्रूप तत्स्वरूप परमात्मा रूप ही है, इस दृढ़ निश्चय के द्वारा जगत को ओम के वाचार्थ भूत परमात्मा में विलीन कर डाले। तो परमात्मा में ओम शब्द में ए, ऊ और मैं चार अक्षर आते हैं। तो चारों अक्षर का जो प्रथम पाद है वो ए है, ए मतलब अकार। अकार जो है उसका प्रथम पाद है ओंकार का। तो अकार का मतलब है, अकार को अगर देखें, जो ओंकार का प्रथम पाद है अकार, तो इसको पहला जो पाद है उसकी पहली मात्रा जो अकार है उसको कहा है पृथ्वी, और जो दूसरी मात्रा उकार है उसको कहते हैं अंतरिक्ष लोक। तो पहली मात्रा जो ओंकार की अकार है उसको कहा पृथ्वी लोक, दूसरी मात्रा जो उकार है उसको कहते हैं अंतरिक्ष लोक, और जो तीसरी मात्रा मकार है उसको कहते हैं द्युलोक, और जो प्रणव की चौथी मात्रा है वो है ओंकार बिंदु, ए ऊ मैं और एक है उसके बिंदु जिसको बन के हो जाता है ओंकार। तो जो चौथी मात्रा है प्रणव की, जो बिंदु है, उसको कहते हैं सोमलोक। तो एक हो गया पृथ्वी लोक पहला पाद, दूसरा पाद हो गया अंतरिक्ष लोक, तीसरा पाद हो गया द्युलोक, है ना, जो ऊपर के लोक हैं स्वर्ग लोक और अनेक जो उच्च लोक हैं वो द्युलोक हो गया, और चौथा हो गया इसका सोमलोक जो चौथा पाद है। तो इस तरह से ये लोक की व्यवस्था जो चार लोक बताए, तीन लोक हैं और चौथा भगवान का जो लोक है सोम लोक है। इसी तरह से जो वेद हैं चार, तो ओंकार का जो प्रथम पाद है अकार वो ऋग्वेद को कहते हैं। ऋग संबंधी जो मंत्रों के साथ ऋग्वेद है वो पहला पाद है। जो दूसरा पाद उकार है उसमें यजु मंत्रों के साथ यजुर्वेद है, और तो तीसरी मात्रा है मकार, उसके अंदर साम मंत्रों के सही साम वेद है, और जो चौथा पाद है बिंदु या ओंकार का जो चौथा पाद है उसमें अथर वेद है, अथर मंत्रों से तथर। तो ये चार वेद हो गए और प्रणव के ओंकार के चार पाद हो गए, पहला अकार उकार मकार और बिंदु, ये मिलके ओंकार हो जाता है। इसी तरह से जो पहला पाद है उसको कहते हैं, पहला पाद है ब्रह्म देवता, ब्रह्मा जो देवता है, जो ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा देवता जो है वो प्रथम पाद है, और जो विष्णु देवता है वो प्रणव के दूसरा जो पाद है, दूसरी जो मात्रा उकार है उसको विष्णु देवता कहा है, और जो प्रणव की तीसरी मात्रा मकार है उसको रुद्र देवता कहा है, और जो चौथी मात्रा है जो ओंकार बिंदु है वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसका चतुर्थ पाद है। तो इस तरह से तीनों जो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों देवता आ गए और एक ब्रह्म आ गए चौथे पाद में, है ना। तो इसी तरह से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर हो गए प्रथम पाद, स्थूल सूक्ष्म कारण, और उसकी तुरीय अवस्था जो चौथी अवस्था है जो इन सबका साक्षी है वो इसका चतुर्थ पाद हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर चीज़ में तीन गुण हैं, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण और गुणातीत चौथा पाद, जो तीनों गुणों से अलग है, तीनों गुणों से अतीत है। तो इस तरह से सब अगर देखें तो जो ओंकार है अपने आप में चार जो इसके पाद बताए हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो इसी तरह से चार अग्नि बताई, प्रथम पाद में गार्हपत्र अग्नि, दूसरे पाद में बताया, दूसरा पाद बताया उसकी अग्नि है दक्षिणाग्नि, और तीसरे पाद में उनका बताया है कि आहाभिहानी अग्नि, और चौथे पाद में संवर्तक अग्नि। तो इस तरह से अग्नि की बताया और इनको बताया, और ऐसी हमारे अगर काल को देखें तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और जो तीनों कालों से अतीत है वो कालातीत है, है ना। तो सब चीज़ अगर देखें तो जीव है, जगत है, ईश्वर है, और तीनों से अलग ब्रह्म है चौथा पाद। तो सब चीज़ इन तीनों पाद में आ जाती हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, है ना। तो ओंकार का ये जो रूप है, ऐसी जो विराट पुरुष है, इस प्रकार जो पहला पाद है वो विराट पुरुष है, उसका जो अभिमानी देवता विश्व ये वैश्वानर है, है ना। और दूसरा पाद जो है वो तेजस है। तो हमारा जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर हो गया, उसका जो अभिमानी देवता विश्व है वैश्वानर है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है यह स्वप्न अवस्था है, पहली जागृत अवस्था है, दूसरी स्वप्न अवस्था है। तो स्वप्न अवस्था का अभिमानी देवता है हिरण्यगर्भ, है ना, तेजस। तो तेजस जो है वो द्वितीय पाद हो गया, और तृतीय पाद जो है उसका जो सुषुप्ति अवस्था है उसका है प्राग अभिमानी देवता। तो प्राग जो ईश्वर का बोध कराने वाली तीसरी मात्रा हो गई, वो परमात्मा का तीसरा पाद हो गया। तो इस तरह से चौथा जो बिंदु वो तुरीय परमात्मा हो गया, तुरीय अवस्था हो गई। तो स्थूल सूक्ष्म कारण और तुरीय कह दें, या साक्षी भाव कह दें, या जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और उनसे अलावा तुरीय अवस्था, तो इन अवस्थाओं को कह दें या शरीर को कह दें तीन पाद। तो इस तरह से चारों पाद में जो ओंकार का आता है वो पूरा हो जाता है। और ओंकार को गीता में ही भगवान ने कहा है, आठवें अध्याय में जो कहा है भगवान ने, ओंकार को अपना स्वरूप ही बताया। आठवें अध्याय में भगवान कहते हैं गीता के जो श्लोक है, ये तेरहवां श्लोक, ओमित्य अक्षरम ब्रह्म, कि जो ओम है वो इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, ब्रह्म का जो उच्चारण करता हुआ इस शरीर को छोड़ता है वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो जो एक अक्षर है ओम, उसको भगवान ने अपना स्वरूप ही कहा है, ब्रह्म कहा है। इसी तरह से भगवान ने इसमें भी जो सत्रहवां अध्याय है उसमें भी भगवान ने कहा, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण से, ओम तत्सत, ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है, है ना। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण तथा वेद यज्ञ आदि आदि रचे गए। तो ओम जो है, इसी तरह से वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले, शास्त्र विधि से नियत, यज्ञ दान तप रूप सब क्रियाएं ओम परमात्मा के नाम से उच्चारण करके आरंभ। तो परमात्मा का नाम जो ओम है, तो इसके चार पाद बताए, अकार, उकार, मकार और ओंकार जो बिंदु है, है ना। उसमें देखो पृथ्वी लोक भी आ गया, अंतरिक्ष लोक भी आ गया, द्यूलोक भी आ गया, सोमलोक भी आ गया, मनुष्य के चारों शरीर आ गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और उसके अलावा जो हमारा तुरीय अवस्था है, है ना, उनसे तीनों गुण भी आ गए, और गुणों से अतीत जो कालातीत है जो ब्रह्म है। तो इस तरह से ओंकार अपने आप में पूरा जो जगत है, हमारी चाहे तीनों अवस्थाएँ हैं या तीनों गुण हैं, जो प्रकृति के तीन गुणातीत त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये तीन पाद हो गए, या चौथे पाद में गुणातीत परमात्मा आ गए। तो कोई भी चीज़ देखे, काल है, है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और इनसे कालातीत जो इन कालों से अतीत है वो ब्रह्म है। तो ओंकार में सब कुछ आ जाता है, पूरा जो जगत है, पूरा जो विश्व रूप है, विराट रूप है भगवान का, वो पूरे ओंकार में आ जाता है। तो ओंकार के ऊपर थोड़ा विचार किया, इसके ऊपर आप लोग चिंतन करें। ओ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखा भवेत् ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।